प्रसाद कृपा या अनुग्रह तत्व के विषय में कठोपनिषद में कथन है। यह आत्मा विद्याध्ययन द्वारा प्राप्त होने वाले होने योग्य नहीं है और नहीं धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकती है, बल्कि साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उसी से उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देती है। यही प्रसाद और अनुग्रह तत्व वैष्णव धर्म का प्रधान आधार है, जो उपनिषदों में कहा गया है। कठोपनिषद के अनुसार अणु से अणुतर और महान से महत्तर आत्मा जीव की हृदय रूपी गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता और शोक रहित हो जाता है। परम तत्व अथवा परमात्मा की शरण में जाने की आकांक्षा साधक को होती है, जो अपनी भक्ति और साधना से उस ओर प्रवृत्त होता है। इसकी अभिव्यक्ति श्वेताश्वर उपनिषद में पूर्णतया हुई है, जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है तथा जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है। अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। भक्ति के क्षेत्र में गुरु के निर्देशन का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। ज्ञान प्राप्ति गुरु वचन से ही संभव है। वेदों और उपनिषदों से विदित होता है कि ज्ञानार्जन के लिए लोग दूरवर्ती ऋषियों और मुनियों के यहाँ जाते थे। भागवत पुराण में उल्लिखित है कि गुरु कृपा के अभाव में भक्त उसी प्रकार संसार समुद्र में पड़कर सैकड़ों क्लेशों से ग्रस्त रहता है, जिस प्रकार पोतवणिक मल्लाह के अभाव में विभिन्न प्रकार के कष्ट समुद्र में झेलता है। अतः भक्त को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। उपनिषदों में ऐसे अनेक दृष्टांत है जब बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका था। कैके नरेश अश्वपति ने उद्यालक प्राचीन साल आदि अनेक विद्वानों को वैश्वानर विद्या का ज्ञान कराया था। यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी थी। अरुणी को प्रवाहण जैवली ने पंचाग्नि विद्या का ज्ञान कराया था। इस प्रकार वैदिक साहित्य से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर विविध पुराणों का ज्ञान और कर्म तत्व विकसित हुआ, जिसमें अनुरागात्मिकता, भक्ति, शरणागतिभूता, प्रपति, भगवनाम का स्मरण, कीर्तन, मनन, पूजन, गुरु की उपादेयता, मुमुक्षु की मोक्ष साधना आदि का उल्लेख है। क भक्ति का स्वरूप हेडलाइन है। पौराणिक धर्म में भक्ति का स्वरूप सर्वोपरि था। भक्ति के ही माध्यम से देवता तक पहुंचने की पुष्टि की गई है। भक्ति के तीन प्रकार दर्शित होते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। मन में मुक्ति के आधार पर ध्यान करना मानसिक भक्ति थी। जप, मंत्र पाठ आदि वाचिक भक्ति कहा गया था। शरीर, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण लगाने वाले उपवास, व्रत, नियम आदि कायिक भक्ति के अंतर्गत गृहित किए गए थे। पद्म पुराण में भक्ति की विशद व्याख्या की गई है तथा इसके तीन अन्य रूप भी बताए गए हैं। पहला लौकिक, दूसरा वैदिक और तीसरा आध्यात्मिक। लौकिक भक्ति में विभिन्न प्रकार के नैवेद्य सामग्री अर्पित करते हुए आराध्य देव की पूजा की जाती थी। फल, फूल, घी, दूध, द्वीप, चंदन, धूप, आभूषण, सुवर्ण हार, भोज्य पदार्थ आदि नैवेद्य में अर्पित किए जाते थे। वैदिक भक्ति के अंतर्गत वैदिक मंत्रों का मनन, जप, संहिताओं का अध्यापन, अध्ययन आदि आता था। सांख्य दर्शन और यौगिक अभ्यास के आधार पर की जाने वाली भक्ति आध्यात्मिक भक्ति कही जाती थी, जिसमें दो प्रकार से भक्ति की जाती थी। एक में सांख्य दर्शन से संबंधित प्रकृति और पुरुष का विमर्श होता था, एवं दूसरे में योगाभ्यास के आधार पर ध्यान किया जाता था। यही नहीं, पुराणों में तीन और रूप भी चर्चित किए गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। सतमार्ग का अवलंबन करते हुए इच्छा समाप्त कर मोक्ष को अभिषित मानकर भक्ति करना सात्विक भक्ति थी। विषय में स्थित रहते हुए यश और ईश्वर की कामना के निमित्त की जाने वाली भक्ति राजसी भक्ति थी। अहंकार, मान, आडंबर, ईर्ष्या, द्वेष से की जाने वाली भक्ति तामसी भक्ति कही गई। अतः पुराण साहित्य में भक्त की व्याख्या विभिन्न रूपों में की गई तथा उसके चिंतन और आचार पक्ष पर भी समीक्षात्मक विचार किया गया है। ख व्रत का स्वरूप। पौराणिक धर्म में व्रतों का प्रमुख स्थान था। उपवास, दान, ब्राह्मण भोजन, पूजन आदि विभिन्न प्रकार के विधान व्रत के अंतर्गत किए जाते थे। कभी कभी व्रती एकांत में रहकर ध्यानस्थ रहा करता था और व्रत के उपरांत अपना उपवास तोड़ता था तथा ब्राह्मणों को गौ स्वर्ण रत्न और भूमि आदि दान में प्रदान करता था। विष्णु कृष्ण राम महादेव गणेश दुर्गा आदि विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित अनेक व्रत प्रचलित थे जिनका साधक अनुपालन करता था तथा देवता के नाम पर वेदिका बनाकर कलश फूल फल नैवेद्य आदि रखकर पूजन करता था। पुराणों के काल में ऐसे व्रतों की अधिकाधिक संख्या हो गई जो वर्ष के प्राय सभी मासों में पड़ा करते थे। ऐसा विश्वास था कि व्रतों के अनुपालन से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है और ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। कालांतर में व्रतों के साथ ही यागिक क्रियाएं और पूजा पाठ भी जोड़ दिए गए थे जिनसे कुछ जटिलताएं बढ़ गई थी, किंतु व्रत करने वाला व्यक्ति सत्य अहिंसा सदाचार दान दया अनुग्रह आदि मार्गों का अनुपालन करता ही था। ग वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन। पौराणिक युग में वर्णाश्रम धर्म का निष्ठापूर्वक अनुगमन करने के लिए निर्देश दिया गया था। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्यों का निर्वाह करता था वह परमेश्वर की पूजा करने का अधिकारी था। कूर्म पुराण में उल्लिखित है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ वेद विहित स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वायु पुराण में शिव को वर्णाश्रम धर्म का प्रवर्तक माना गया है। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन नहीं करता उसे यमलोक यात्रा सहनी पड़ती थी। स्वर्ग और नरक कल्पना भी की गई तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुवर्तन से स्वर्ग की प्राप्ति की पुष्टि की गई। विष्णु पुराण से विदित होता है कि स्वयं यम ने अपने दूतों को यह निर्देश दे रखा था कि वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों को स्पर्श न करें। स्पष्ट है कि पौराणिक युग में वर्णाश्रम धर्म का समाज में आदर और सम्मान था।
प्रवृत्ति और निवृत्ति का निवेशक।
घ प्रवृत्ति और निवृत्ति का निवेशन। पुराणों में कर्म और मोक्ष के साथ साथ प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी विश्लेषण किया गया है तथा दोनों प्रवृत्तियों का उनमें अविराम समन्वय दृष्टिगत होता है। उनके अनुसार कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था जो उसके वर्णगत आचार से संचालित होता था। संसार में रहकर मनुष्य वृत्ति के वशीभूत हो जाता है और वह अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक अपने कर्तव्य करता रहता है जो उत्तम और अधम दोनों प्रकार के होते हैं। वह अपने कर्म और कर्तव्य सुख प्राप्ति के लिए करता है जो लौकिक जीवन से संबंध रहता है। वह साधारण धर्म और स्वधर्म दोनों को करता है। साधारण धर्म सार्वभौम और सार्वजनिक है जिनमें अहिंसा क्षमा इंद्रिय निग्रह दान दया सत्य शौच तप ज्ञान आदि शामिल है। इनमें अहिंसा का स्थान सर्वोच्च है। अहिंसा के साथ साथ सत्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अहिंसा और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं। इसके साथ ही व्यक्ति सर्वधर्म के कर्तव्य करता है जो उसका वर्ण धर्म और वर्ण आश्रम है। व्रत दान और प्रायश्चित जैसे कर्म स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का अद्भुत संगम है। अंग लोक कल्याण। पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ। पुराणों में लोक कल्याण से संबंधित पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ मिलते हैं जिनमें व्यक्ति के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने सद्व्यवहार और सदाचार से परिवार और समाज को प्रसन्न रखे। कभी कभी परिवार अपने समाज के लिए किसी सदस्य द्वारा किसी के प्रति व्यवहार दुर्व्यवहार किए जाने पर भी शांत और गंभीर रहने के लिए पुराणों में कहा गया है। परिवार में उच्च शांत और मित्रता का वातावरण बनाए रखने के लिए सदस्यों को निर्देश दिया गया है। कुटुंब के उन सदस्यों की निंदा की गई है जो गृहस्थ जीवन में पवित्रता नहीं रखते थे, माता पिता तथा गुरु अग्रज के प्रति आदर भावना नहीं दर्शित करते थे, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते थे, सभी जीवों के प्रति दया नहीं करते थे, निर्धन और आकांक्षी लोगों को दान नहीं देते थे, शत्रु मित्र के प्रति समान भाव नहीं रखते थे तथा कन्या अपहरण और दुष्ट आचरण करते थे। पुराणों में सत्कर्म और सच्चरित्र व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान व्यवहार, मित्रों से सद्भाव और भगवान विष्णु की पूजा करने वाला व्यक्ति अभिनंदनीय था। पति पत्नी के संबंध अत्यंत पावन और प्रेमपूर्ण थे। कुटुंब में पति की श्रेष्ठता थी और पत्नी का स्थान देवी के रूप में था। समस्त धार्मिक और यागिक कार्य में पत्नी की उपस्थिति अपेक्षित थी। कौटुंबिक कलह और झगड़े से परिवार की शांति और प्रतिष्ठा भंग होती थी, इसलिए पुराणों में इनकी निंदा की गई और गृहस्थों को शांति का मार्ग अपनाने के लिए निर्देशित किया गया। सत्य भाषण, स्वच्छ हृदय, मंगल भावना और स्नेहिल वातावरण से परिवार का उत्कर्ष होता था। जो व्यक्ति इन मार्गों का अनुसरण न करके असत्य अनादर निर्दय और कठोर भावना का व्यवहार करता था उसके मरने के पश्चात बड़ी दुर्गति होती थी, ऐसे पुराणों में निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए सद्वृत्तियों और सद्गुणों का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया, जिससे लोक कल्याण और लोकोत्थान संभव था। च, लोक कल्याण में धार्मिक वृत्तियों का योगदान। समाज के कल्याण के लिए धार्मिक वृत्तियां अत्यंत आवश्यक थी तथा धर्म के पथ पर चलकर समाज का उत्थान किया जा सकता था। सार्वजनिक उपयोगिता के लिए पूर्त का निर्माण किया जाता था, ऐसे निर्माता पुण्य के भागी होते थे। पुराणों में कहा गया है कि जलाशय, उपवन, कूप, मंदिर आदि का निर्माण करने वाला व्यक्ति लोक और परलोक दोनों में आदरित होता था। जिस जलाशय में वसंत और ग्रीष्म तक जल बराबर बना रहता था, उसका निर्माता अश्वमेध अथवा राजसु यज्ञ के फल का भागी होता था। कूप, तड़ांग, मंदिर आदि का निर्माण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक प्राप्त करता था। जो व्यक्ति वृक्ष का रोपण करता था, उसे पुत्र की प्राप्ति होती थी। धार्मिक मार्ग का अनुगमन करने पर किसी भी व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो सकता था, चाहे वह निर्धन हो अथवा धनी, उच्च हो या नीच। मित्रों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को उसके कर्म का लाख गुना फल मिलता था। कामना के त्याग से व्रत का फल प्राप्त होता था। संतोष को सर्वोच्च और शुद्ध धन माना गया था। उपवास रखने के लिए कर्म की प्रशंसा की गई थी। धर्म पथ के लिए अहिंसा, सत्य दान, स्त्री त्याग आदि वांछनीय था। ऐसे मार्ग के अनुयायी को चाहे वह चंडाल ही क्यों न हो, मोक्ष प्राप्त होता था। देवगण और उनकी प्रतिष्ठा। हेडलाइन है, पुराणों में अनेकानेक वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख हुआ है, किंतु उनमें पंच देवताओं की आराधना प्रधान है। पंच देव में विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य सम्मिलित हैं। ये पांचों देवता वैदिक हैं, जो परवर्ती काल में आकर प्रधान हो गए। इस युग में लक्ष्मी, दुर्गा आदि विभिन्न देवियों की भी प्रतिष्ठा हो गई थी। इन देवताओं का वैदिक युग में अपेक्षाकृत बहुत कम महत्व था। उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान पुराण काल में जाकर ही हुआ। इन देवताओं से संबंधित पृथक पृथक वर्ग भी हो गए, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विकसित हुए। यद्यपि बाद में इन संप्रदाय में अनेक उप संप्रदाय भी बन गए। विष्णु से वैष्णव धर्म, शिव से शैव धर्म, शक्ति से शाक्त धर्म और विसूर्य से सौर धर्म का उत्कर्ष हुआ, जिनके अलग दर्शन और पूजन पद्धतियां थी। पुराणों में अन्य देवताओं का भी उल्लेख हुआ है, जिनमें इंद्र, वरुण, मरुत, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ब्रह्मा, प्रजापति आदि विशेष प्रख्यात हैं। इनमें अधिकांश ऐसे वैदिक देवता थे जिनका इस काल में महत्व कम हो चुका था। इनका महत्व कम होने का क्रम महाकाव्यों के युग से ही प्रारंभ हो चुका था, जो कालांतर में और क्षीण हो गया। पंचदेवों में तीन देवों का अधिक मान और प्रभाव हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भक्त शक्ति और प्रतिष्ठा क्रम सब बढ़ने लगी। त्रिदेवों में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना गया तथा पुराणों में यह कहा गया कि ईश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता है, विष्णु के रूप में पालन करता है तथा शिव के रूप में संहार करता है। इस प्रकार त्रिदेवों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त किया गया। वायु पुराण से विदित होता है कि विष्णु और ब्रह्मा एक दूसरे में विद्यमान होकर प्रतिष्ठित हो गए तथा सृष्टि के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित हो गए। कालांतर में शिव के आने पर उन दोनों देवताओं ने उनका सत्कार किया। विष्णु ने यह कहा कि मैं सनातन योनि हूँ, ब्रह्म बीज है तथा शिव बीजी। विष्णु और ब्रह्म दोनों ने शिव की श्रेष्ठता स्वीकार की तथा भक्ति में लगे रहने की कामना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकत्व का आख्यान पुराणों में दृढ़ होता है। अवतारवाद की पृष्ठभूमि। हेडलाइन है, हिंदू धर्म में ज्ञान की अभिव्यक्ति के अंतर्गत अवतारवाद का प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रधान प्रयोजन धर्म स्थापन और अधर्म विनाशक था। वैदिक काल से ही अवतारवाद का प्रारंभ हो चुका था। अवतार स्वयं विष्णु ही है, जिनके अनेक अवतारों की कथा वैदिक युगीन ग्रंथों में विवृत है। वैसे उनके वराह, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्क, ये 10 अवतार कहे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा के साथ मत्स्य अवतार का उल्लेख है। प्रजापति द्वारा जल के ऊपर कूर्म रूप में अवतार लेना ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है। विष्णु के वराह रूप का संकेत ऋग्वेद में मिलता है। तैतरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में भी वराह अवतार का वर्णन किया गया है। वामन की कथा ऋग्वेद में वर्णित है, जो तैतरीय संहिता में अत्यंत विस्तार से विवृत की गई है। रामायण और महाभारत में क्रमशः राम और कृष्ण के अवतारों की कथाएं हैं। रामायण में वर्णित है कि जब देवताओं ने अपना कष्ट भगवान विष्णु से निवेदित किया, तब वे शंख, चक्र, गदा धारण किए, पीत वस्त्र पहने गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए। तदनंतर देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अवतार की बात श्रीमद भागवत में कही है। कालांतर में अवतारवाद और उनका ज्ञान तत्व पौराणिक धर्म की प्रधान पीठिका बन गया। वस्तुतः अवतार की पृष्ठभूमि से देव तत्व का प्रतिष्ठापन और दर्शन तत्व का प्रतिपादन हुआ। संसार में जब नैतिक और धार्मिक मूल्यों का अनैतिकता और अधार्मिकता के कारण विनाश होने लगता है, प्रकाश के स्थान पर अंधकार का अवतरण हो जाता है, रीत के स्थान पर अनरीत और धर्म के स्थान पर अधर्म छा जाता है, तब सत्पुरुषों के त्राणार्थ, भक्तों की आरती के विनाशार्थ और धर्म के स्थापनार्थ करुणाकर भगवान की इस श्रेष्ठ शक्ति इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होती है तथा अधार्मिक और अनैतिक तत्वों का समूल नाश करती है। इस प्रकार जगत में पुनः धर्म, सदाचार और नैतिकता का स्थान होता है तथा मानवता का भगवत तत्व में उत्तरण होता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि यदि परमात्मा अपने पूर्ण वैभव और विलास के साथ इस पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुए होते तो अल्पज्ञ जीव उनके विलक्षण सौंदर्य, मौधुर्य, गंभीर्य, औदार्य, करुण्य आदि विभिन्न दिव्य गुणों का कैसे ज्ञान प्राप्त करता। अतः भगवान की अभिव्यक्ति प्राणियों के निह श्रेयस अथवा लीलानंद के निमित्त होती है। कृष्ण का अवतार होने पर जीव को ईश्वर की निखिल लोकातिशायिनी का परिचय प्राप्त होता था। वह नाना रूपधारी, स्थूल और सूक्ष्म, अव्यक्त और व्यक्ति तथा मुक्त का हेतु था। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है।